स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यहूदा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्य विषय है विश्वास के लिए संघर्ष। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और इस समय आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर पत्रों के माध्यम से, फोन के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से हम तक आप अपने आशीषों को पहुंचाते हैं, प्रार्थना निवेदनों को पहुंचाते हैं। पिछले दिनों हमने आपके पत्रों को पढ़ा और मुझे काफी उत्साह मिला क्योंकि मुझे पता है कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे मित्रों, इसी प्रकार से आप पत्रों के द्वारा हमें उत्साहित करते रहें ताकि हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने पाएं। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन एक साथ रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठ करके कर सकते हैं। आज जब हम फिर से यहूदा की पत्री से अध्ययन करते हैं तो हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि वे आपके वचन की भेद की बातों को समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके मुताबिक चलने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें। आज हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए भी जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं। प्रभु जी, आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। आज उनसे इन वचनों के द्वारा बोले और बातचीत करें। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहूदा पाखंडियों के बारे में, विधर्मियों के बारे में, झूठे शिक्षकों के बारे में कहता है कि वे समुद्र में तैरते बर्फ के शिलाखंड हैं जो आपके विश्वास को नष्ट कर देते हैं और हवा में उड़ते हुए बादल हैं जिनमें जीवन का जल नहीं है। वे दो बार मरेंगे, आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु। उनके पास परमेश्वर का सच्चा वचन नहीं है। उनका प्रचार निरर्थक बातों से भरा हुआ है। वे आकाश के भटकते हुए सितारे हैं। उनका मार्ग निश्चित नहीं है। वे अनंत घोर अंधकार में डाले जाएंगे। हनोक की भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु सबका न्याय करने के लिए आएगा। प्रभु यीशु ने स्वयं भी कहा है कि वह सबके अधर्म और अधर्म के काम तथा परमेश्वर के विरुद्ध कही गई कठोर बातों का दंड देगा। मेरे मित्रों, हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए यहूदा की पत्री उसके 16 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। मेरे प्रियो, यहां विधर्मियों की 5 अतिरिक्त पहचान है। पहली बात हम देखते हैं कि वे हत्यारे हैं। कुड़कुड़ाने वाले से यहां अभिप्राय यह है कि वे मन ही मन कोसते हैं। वे परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं। दूसरी बात है कि वे असंतुष्ट रहते हैं। वे अपने जीवन के बारे में शिकायत ही करते रहते हैं। वे सब बातों का दोष परमेश्वर को ही देते हैं। मुझे सैकड़ों पत्र मिलते हैं जिनमें पत्र लिखने वाले जीवन में असंतोष प्रकट करते हैं, अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं, परंतु प्रभु यीशु को ग्रहण करने पर वे अपने जीवन से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। तीसरी बात, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। आवश्यक नहीं कि उनमें दुराचार की अभिलाषाएं हो, परंतु अच्छी या बुरी वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ही चलते हैं। उनका जीवन परमेश्वर से रहित है। चाहे उनके प्रचार में अच्छा संगीत हो, साहित्य हो या संतोषदायक धर्म हो, परंतु उनका मन शांति नहीं पाता है। चौथी बात है, मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। वे अधिक बोलते हैं, कठोर शब्द काम में लेते हैं। उनकी बातों में गहराई नहीं होती है, केवल उफान होता है। आप समझ नहीं पाएंगे कि उनका समर्पण वास्तव में क्या है। और अब है पांचवी बात, मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। लाभ के लिए किसी की प्रशंसा करना। आपको स्मरण होगा कि याकूब भी इस विषय में कुछ कहता है। याकूब की पत्री 2:1-4 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो, तू वहां अच्छी जगह पर बैठ, और उस कंगाल से कहो, तू यहां खड़ा रह या मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने भेदभाव ना किया और विरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। जी हां, यह उदाहरण याकूब के पत्र में हमें दिया गया है। एक बार मैं प्रचार करने के लिए किसी कलीसिया में गया हुआ था। उनके प्रवेशक मुझे नहीं जानते थे। मैं समय से पहले वहां पर पहुंच गया था, अतः मैंने सोचा कि मैं बिना अधिक प्रदर्शन के भीतर जाकर बैठ जाता हूं। आराधनालय के द्वार पर 2 व्यक्ति खड़े हुए बातें कर रहे थे। मैं वहीं खड़ा हो गया। अंत में एक ने पूछा, आपको क्या पत्रिका चाहिए? मैंने कहा, जी हां धन्यवाद। आप कहां बैठना चाहेंगे? मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि कहां बैठना है। आप क्या वहां बैठ जाएंगे? वह मुझे सामने ले जाना नहीं चाहता था, जबकि वहां स्थान बहुत था। उसके व्यवहार में मित्रता का प्रदर्शन नहीं था। जब मैं प्रचार मंच पर आया, तब मैंने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अंत में उसने आकर क्षमा याचना की और कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आप ही वह प्रचारक हैं। मैंने कहा, मेरा पहचाना जाना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि आप मुझे प्रवेश करने दें या न करने दें, मुझे तो यहां प्रचार करना ही था। परंतु मेरे विचार में आप प्रवेशकों को, अपरिचित आगंतुकों को यथास्थान बैठाना और उनके साथ मित्रता का व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, हम विश्वासियों को मुंह देखकर मनुष्य की प्रशंसा नहीं करना है कि हमें लाभ हो, परंतु ऐसा स्वभाव कलीसिया में और स्कूलों में देखने को मिलता है। एक स्कूल दूसरे स्कूल के उपकार के बदले में उस पर उपकार करता है। आज बहुत से लोग मुंह देखकर न्याय भी करते हैं। प्रचारकों का भी यही एक अभ्यास है। जब हम प्रचार करने जाते हैं, तब वहां का पासवान या पादरी हमारी बहुत प्रशंसा करता है, और जब वह हमारी कलीसिया में या हमारे क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आता है, तो हम उसे ऐसा महापुरुष बना देते हैं जैसा वह वास्तव में है ही नहीं। यह वास्तव में सत्यनिष्ठा नहीं है। जी हां, यह विधर्मियों का स्वभाव है। उन्हें परमेश्वर की चिंता नहीं है। वे प्रभु यीशु से सुनना नहीं चाहते हैं। धन्य हो मेरे विश्वास योग्य सेवक। क्या आप सुनना चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपसे कहे कि धन्य मेरे विश्वास योग्य दास? वे मनुष्य की प्रशंसा खोजते हैं, यीशु की नहीं। किसी सभा में एक दब्बू प्रचारक ने आकर मुझसे पूछा, आप अपने कलीसिया में क्या ऐसा ही प्रचार करते हैं? मैंने कहा, निश्चय ही, क्यों? यदि मैं अपने कलीसिया में ऐसा प्रचार करूं तो वे मुझे बाहर कर देंगे। मैंने उससे स्पष्ट कहा, मुझे आप पर तरस आ रहा है। मेरे विचार में आपकी कलीसिया गर्त में है। यह संदेश मैं अपनी कलीसिया को सुना चुका हूं। मेरे प्रियो, वे लाभ के लिए मनुष्यों को सराहते हैं। वे अपनी पदोन्नति के लिए परमेश्वर को नहीं, मनुष्य को देखते हैं। यह निश्चय ही झूठे शिक्षक की पहचान है और दंड के लिए ठहराया जाना है। हम आगे देखते हैं विधर्म के युग में विश्वासियों का कार्य। पद 17 से 19 में यहूदा विश्वासियों को चेतावनी देता है कि झूठे उपदेशक आएंगे, और पद 20 से 25 में वह बताता है कि विधर्म के समय विश्वासियों को क्या करना होगा। तो आइए हम देखते हैं विधर्मियों के आगमन की चेतावनी। यहूदा विश्वासियों से कहता है कि प्रेरितों ने पहले ही विधर्मियों के आगमन की चेतावनी दे दी थी, अतः हमें परेशान नहीं होना है। परमेश्वर ने विधर्म को अनुमति दी है तो उसमें उसका उद्देश्य निहित है। यहूदा उसके 17 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। विधर्मियों की चर्चा करने के बाद अब यहूदा विश्वासियों से कहता है, पर हे प्रियो, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहूदा विश्वासियों से प्रेम करता था, परंतु उसके कहने का अभिप्राय था कि वे परमेश्वर के प्रेमी हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव व्याप्त है। कहता है, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। यह चेतावनी धर्मशास्त्र में हर जगह है। कहने का अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर का वचन स्मरण रखना है। हमें परमेश्वर का वचन स्मरण रखना है क्योंकि जब इसके महान सत्यों पर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया जाए, तब हमें धर्मशास्त्र स्मरण हो। कहता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि यहूदा अभी तक प्रेरितों की गिनती में नहीं था। जैसा कि हम देख चुके हैं, वह प्रभु यीशु का भाई था। प्रभु यीशु के साथ खून का रिश्ता रखने के बाद भी वह दीनता का स्वभाव प्रकट करता है। वह जो कहना चाहता है उससे वह प्रेरितों के अधिकार में मानता है। उसने पहले भी कहा है कि विधर्म के बारे में पहले भी जो कहा जा चुका है, अब वह कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले भी कह चुके हैं। मेरे प्रियो, अपना अध्ययन पूरा करने से पूर्व ही हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे जानना अति आवश्यक है। मेरे विचार में आप परमेश्वर के वचन के पूर्व ज्ञान के अभाव में इस संसार में खड़े नहीं रह पाएंगे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैंने अनेक विश्वासियों को देखा है जो अपने मसीही आचरण में ठोकर खाकर गिरे हैं। मैं ऐसे हर एक उदाहरण को परमेश्वर के ज्ञान की घटी या कमी का कारण कहता हूं। अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर के वचन को जानना है। आज आप परमेश्वर के वचन को कितना अधिक जानते हैं, अर्थात क्या आप परमेश्वर के वचन का प्रतिदिन अध्ययन करते हैं? क्योंकि जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, और जब आप नहीं जानेंगे तो आप वही गलत काम करेंगे जिसे परमेश्वर मना करता है। मेरे प्रियो, अब हम एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बाइबल अंश को पढ़ेंगे जिसकी व्याख्या करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें वह अंतर व्यक्त किया गया है जिसकी चर्चा आज नहीं की जाती है। यहूदा की पत्री उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। मेरे प्रियो, पद 17 और 18 में यहूदा के कहने का अभिप्राय यह है कि वे प्रेरित तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। उनकी इच्छा परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा से सर्वथा भिन्न होगी। पद 19 में भी यहूदा विधर्मियों की परिभाषा देता है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। यहूदा ने हमें विधर्मियों को पहचानने के इतने अधिक संकेत दिए हैं कि उन्हें पहचानने में हमसे चूक नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन से एक नवजीवन रहित मनुष्य वरन प्रचारक को भी पहचान सकते हैं। जब मैं परमेश्वर के वचन से प्रचार करता हूं तब श्रोताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करता हूं। वे बताते हैं कि परमेश्वर के वचन ने उनके जीवन और उनके परिवार में कैसा अद्भुत परिवर्तन लाया है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे एक गोताखोर पक्षी के समान समझते हैं। उनके विचार में परमेश्वर के वचन की चर्चा करना मूर्खता है। अतः आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन एक मापक है और इसके माध्यम से आप नवजीवन रहित मनुष्य को पहचान सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि ये वे हैं जो फूट डालते हैं। सबसे पहले तो वे कलीसिया में विभाजन लाते हैं। विंसेंट का कहना था कि ये लोग कलीसिया के मध्य विभाजन रेखा खींचकर एक को दूसरे से अलग करते हैं। कलीसिया के विभाजन का एक मुख्य कारण मुक्त विचार से है। उन्होंने कलीसिया को अपने वश में कर लिया था और कहते थे कि रूढ़िवादी कलीसिया का विभाजन कर रहे हैं, और सच तो यह है कि रूढ़िवादी कलीसिया को आधारभूत शिक्षाओं पर स्थिर रखते थे। कलीसिया के विश्वास वचनों में यदा कदा महत्वहीन अंतर था, परंतु वह उनकी नींव थी। मुख्य बातों पर तो उनमें मतभेद नहीं था। मेरे प्रियो, आज कलीसिया को बांटने वाले, विभाजन करने वाले बहुत से लोग उठ खड़े होते हैं, परंतु आज मुझे और आपको पहचानना है कि वह मनुष्य प्रभु यीशु को ग्रहण किया हुआ मनुष्य है या नहीं, वह शारीरिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है या आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है। क्योंकि आप आत्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति में उन सारे बातों को देखने पाएंगे जिसे परमेश्वर उसमें देखना चाहता है, परंतु एक शारीरिक मनुष्य संसार की उन अभिलाषाओं में लिप्त रहता है और वह परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देता। आज सवाल यह है कि क्या आप शारीरिक मनुष्य हैं या आप आत्मिक मनुष्य हैं? क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु के कार्य होते हैं या नहीं? मेरे प्रियो, आज विचार करने की आवश्यकता है ताकि आप भी अपने जीवन में उन सारे अनुभवों को प्राप्त कर सकें, आशीषों को प्राप्त कर सकें जिसे परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। और यही कारण है कि आप जब प्रभु यीशु के पास आएंगे तो वह अपनी आशीषों की परिपूर्णता आपको देंगे, परंतु आपको एक काम करना है, वह यही है कि आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर चलना है ताकि आप एक नया व्यक्ति बन सकें। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, आज प्रभु यीशु आपके शारीरिक जीवन से मुक्ति देकर, आपके हर एक तकलीफों से आजादी देकर अपने निकटता में बुला रहा है। यदि आज आप यीशु को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो निश्चय जानें कि प्रभु यीशु आपके जीवन को नया बना देंगे। और यही कारण है कि पौलुस भी कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, जो कोई मसीह में है वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। जी हाँ, आपका पुराना मनुष्यत्व, आपका शारीरिक जीवन बदल जाता है जब यीशु आपके जीवन में आता है। ओ शांति, ओ आनंद, ओ प्रेम जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, सारी बातें आपके जीवन में यीशु के आने के द्वारा आ जाता है। आप संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। क्या आप यीशु को पाना चाहते हैं? मेरे मित्रों, आज की इस घड़ी आइए हम सब प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने दें ताकि हम परमेश्वर के वचन की सत्यता में बने रह सकें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी जीवित और सामर्थी वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय श्रोता भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके वचन को सुना है, इस घड़ी जो अपने हृदय में आपको पुकार रहे हैं ताकि आप उनके जीवन में आएं और उनके जीवन को आप नया बना दें। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आप उनके पश्चातापी मन को देखें, उनके हृदय को देखें, उनके पापों को क्षमा करके उनके जीवन में अपनी शांति, अपना प्रेम उंडेल दे ताकि वे सत्यता को पहचान कर अपने जीवन को आपकी निकटता में ला सकें। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो इस समय कठोर हैं, प्रभु आप उन्हें नम्र करें। जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं, आप उनकी सुधि लें, उनकी सहायता करें ताकि वे अपने मनों को फिराकर आपकी ओर लौट आएं और उस महान शांति को आप में प्राप्त कर सकें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें कि आप वचन में निरंतर बढ़ते जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
दर बदर भटके रहे दीन दुखी लाचार, हर तरफ आतंक है जात धर्म की दीवार, दया करना सृष्टि के सृजनहार,
मेरे भारत पे दया करना सृष्टि के सृजनहार,
कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारनहार,
कोई नहीं बचा
सृष्टि के सृजनहार,
मेरे भारत पे दया करना सृष्टि के सृजनहार।
की दीवार को, हर दे हर दिल की दरार को,